ओम शांति। ज्ञानी और योगी जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा खुशनुमा, खुश मिजाज चेहरा, चलन, स्थिति। आज इस विषय को स्पष्ट करने के लिए हम सभी के बीच में उपस्थित हैं आदरणीय राजू भाई जी। हम सब भाई जी का एक हाथ की अलौकिक ताली से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। सीखेंगे आज कला। सफलताओं में तो हंसना सब जानते हैं, निष्फलताओं में और परिस्थितियों में भी कैसे अपने जीवन को, अपनी स्थिति को खुशनुमा रखें, खुशनुमा, खुश मिजाज, खुश किस्मत स्थिति बनाने की विधि। आदरणीय राजू भाई जी।
ओम शांति। आप सभी बाबा की राइट हैंड भुजाएं, जिन्होंने बाबा को पहचाना, बाबा को दिल से बाबा कहा और बाबा की सेवाओं में समर्पित हो गए, ये भी कितना बड़ा सौभाग्य है। सारे कल्प में एक संगम युग ही ऐसा समय आता है जब भगवान को हमारी आवश्यकता पड़ती है और वो हम सबको ढूंढ करके अपना बनाता है। बाबा को भक्ति मार्ग में भले हमने ढूंढा हो, लेकिन इस जन्म में मैं समझता हूँ आप सभी कोई ने भी भक्ति नहीं की होगी। बहुत छोटी छोटी आयु में बाबा को पहचाना और बाबा की सेवा में समर्पित हो गई। जिन्होंने इस जन्म में भक्ति की हो हाथ उठाएंगे। अच्छा, हैं ऐसे कितने लोग? हम समझते थे शायद हमारे जैसे सब होंगे, क्योंकि मैंने तो भक्ति नहीं की इस जन्म में और आपसे भी छोटी आयु में मैं समर्पित हो गया। 15 साल की उम्र थी, मधुबन में आ गया। समर्पित किसको कहा जाता है ये भी पता नहीं था। सेवा में आए, सेवा में रह गए, सेवा करते करते समर्पित हो गए। अभी तो नियम बने हैं कि कम से कम 18 साल की उम्र हो, उसके बाद ट्रेनिंग हो, उसके बाद समर्पित हो, 5 साल की ट्रायल हो, बहुत सारे नियम बना दिए गए हैं। लेकिन हम लोग जब समर्पित हुए तो ऐसे कोई नियम नहीं थे और परिवार बहुत छोटा था, तो वो खुश किस्मत, हमारा क्या किस्मत कहें, जो संकल्प उठा और बाबा ने अपनी गोदी में बिठा लिया, बाबा के बन गए। आप सबकी किस्मत भी कितनी श्रेष्ठ है, कितनी खुशनुमा है, कितनी नशे वाली है कि बाबा ने आपको भी अपना बनाकर मुस्कराना सिखा दिया। आज की दुनिया में हंसने के लिए, खुशी के लिए कल्बों में जाते हैं लोग, बहुत प्रयास करते हैं, पैसा खर्च करते हैं और बाबा के तो खुश नसीब बच्चे, खुश नुमा बच्चे सदा खुशियों में डांस करते हैं। हम सबके दिल का गीत क्या है? अगर दिल का वो गीत है तो खुश रह सकते हैं। बाबा के दिल का जो गीत था पहला पहला, वो कौन सा था? पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। मिल गया ना? कि अभी कोई इच्छा है जिसको ढूंढ रहे थे, जिसको पाने की तमन्ना थी, वो बाबा सामने से मिल गया। भक्त लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी सोचते हैं कि पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे भगवान से मिलने के लिए, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और जब हम उनको कहते हैं कि हमको भगवान पढ़ाता है, भगवान हमारी पालना करता है, भगवान हमारा गाइड है, तो कहते हैं पता नहीं ये कैसे बोलते हैं, छोटी मुंह बड़ी बात, ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन हमारे अनुभव में तो आ गया है कि जिसको हम चाहते थे, जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, वो हमारा बन गया। तो ये खुश किस्मत या खुश नसीबी है, हम सबका बड़ा भाग्य है जो बाबा ने अपना बनाया और अपनी सीट पर बिठा दिया, अपने दिल तख्त पर बिठा दिया। मैं तो हमेशा कहता हूँ टीचर्स को बाबा अपनी कौन सी गद्दी पर बिठाता है? विक्रमादित्य की गद्दी पर बिठाता है। ये ब्रह्मा बाबा जिस आत्मा के आदि मध्य और अंत को हम सब जानते हैं, आदि में जो श्री कृष्ण की आत्मा है, मध्य में जो विक्रमादित्य की आत्मा बनी, और अंत में आकर जो प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा कहलाई, उसका ये सिंहासन हम सबको मिलता है। टीचर्स को विशेष मिलता है ना सा सबको। तो कितना बड़ा भाग्य है, कितनी बड़ी खुश नसीबी है जो भगवान ने अपने सिंहासन पर हम सबको बिठाया है। दिल के आसन पर तो हम सब बैठे ही हैं, दिल तक नसीन तो हैं ही, लेकिन स्थूल में भी मुरली सुनाने का जो आसन मिलता है, वो भी आप बहनों को मिलता है। तो कितनी खुश किस्मती है, खुश नसीबी है उसका नशा। क्या पाया है, क्या मिला है, एक बार अपने आप से पूछो। इतना श्रेष्ठ और अविनाशी संबंध एक बाबा से जुट गया। सबसे बड़ा नसीब तो ये है कि आज दुनिया वाले किसी का संबंध किसी देहधारी के साथ अगर जोड़ देते हैं, कोई माँ बाप अपनी बच्ची की सगाई किसी के देहधारी से कर देते हैं, वो दुविधा में रहते हैं, पता नहीं ये साथ निभा पाएगा या नहीं, क्या होगा। उनके जीवन का कोई भी निर्णय वो नहीं ले पाते हैं, पता नहीं उसका कैसा रहन सहन होगा, कैसा व्यवहार होगा, कैसे मेरी बेटी को ये रखेगा, क्या करेगा। बहुत संकल्प माँ बाप को चलते हैं, लेकिन आप सबके जीवन का तो ये नशा है, ये निश्चय है कि ऐसा विनाशी साथी, ऐसा श्रेष्ठ संबंधी हम सबको मिला है, जो हर संबंध से साथ निभाता है। तो इतनी बड़ी खुश नसीबी और किसकी होगी। दो चीजों की इच्छाएं रहती हैं कुमारियों के जीवन में विशेषकर, एक अच्छा वर हो, एक अच्छा घर हो। तो बाबा ने आपको दोनों चीजें सामने से उपलब्ध करा दी। वर खुद बन गया, अविनाशी वरदाता खुद वर बन गया, और घर भी कितने अच्छे अच्छे सेंटर्स दे दिए, बना करके दे दिया, बच्चे आराम से रहो, खूब सेवा करो। तो ये सबसे बड़ा भाग्य है जिसकी खुशी, आंतरिक खुशी कि सचमुच जो पाना था वो पा लिया है। सबको ऐसी खुशी रहती है? जिनको रहती है सच्ची, हाथ उठाना। हैं ऐसे जिन्होंने नहीं उठाया हो, जिन्होंने नहीं उठाया हो थोड़ा उठाएंगे, हैं ऐसे भी हैं क्या? अच्छा एक दो ही हैं, इधर नहीं उठा रहे हैं। कोई कारण हो सकते हैं सेंटर्स के, वो अलग बात है, क्योंकि हमारी खुशी को छीनने के लिए माया पीछे पीछे लगी रहती है। हमने बाबा को तो पहचान लिया, उसको पहचानने में मेहनत नहीं लगी, लेकिन माया के बहुरूपों को पहचानना और उसमें अपने आप को सेफ रखना, उसमें थोड़ी मेहनत है। और उसके कारण ही हमारी खुशी कभी न कभी छिन जाती है। आप सबने सीता की कहानी सुनी है, पढ़ी होगी, रामायण में देखी होगी, कैसे उसका साथ छूटता है, कैसे उसको माया अपने जाल में फंसाती है। राम के संग में रहने वाली उसके बिना एक पल भी न जी सके, लेकिन माया ने उसको अपने चक्र में, ऐसा चक्रव्यूह में ले आया जो बेचारी को शोक वाटिका में जाना पड़ा। माया ने वो छलिया रूप रखा सोनी हिरन का, और उस सोनी हिरन के रूप में जब आई तो वो आकर्षित हो गई कि ये मुझे चाहिए। पहले वो परख नहीं सकी, राम उसको समझा रहा है कि ये सोनी हिरन नहीं होता, ये झूठा है, ये मायावी है कोई रूप, लेकिन वो नहीं मानी, जिद किया। पहले परखने की शक्ति कम हुई, बहुरूप माया का परख नहीं सकी, फिर जिद किया, और जिद करने के बाद जब हठ किया कि नहीं मुझे तो चाहिए ही, तो राम को भी उस हठ के कारण उसके पीछे जाना पड़ा। और फिर उसके बाद वो लक्ष्मण रेखा जो थी उसका भी उल्लंघन कर दिया, उसमें भी रावण के रूप को नहीं पहचान पाई कि रावण साधु वेश में सामने भिक्षा लेने के लिए खड़ा है, उस समय भी धोखा खा लिया। तो हमारी खुशी को छीनने वाली माया किस किस रूप में आती है, हमारे यादगार शास्त्रों में बड़ी रमणीकता से वो कहानियां बनाई गई हैं। प्रैक्टिकल तो अभी की बातें हैं ना, इस समय जो सीताएं राम से बिछुड़ती हैं, जिनकी खुशी छिन जाती है, संबंध विच्छेद हो जाता है, उसका मूल कारण है हम माया के बहुरूपों को पहचान नहीं पाते। इसलिए परखने की शक्ति बहुत फास्ट तीव्र करनी पड़ेगी, माया का कोई भी रूप मेरी खुशी को गायब न कर दे। अगर कभी भी भूले चुके भी खुशी गायब हो जाए, क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं बच्चे भले शरीर छूट जाए लेकिन तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए, हिमालय जितनी बड़ी से बड़ी परिस्थिति पेपर आपके सामने आ जाए फिर भी आपकी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा साथी कौन है, तुम्हारा सर्वशक्तिमान साथी स्वयं भगवान तुम्हारे साथ है, फिर ये बातें क्या बड़ी बात है। लेकिन कई बार वो छोटी छोटी बातें जो संगठन में जब हम प्रवेश करते हैं, चलने की थोड़ी सी भी कला अगर नहीं आती किसी को तो संगठन में आते ही उसकी खुशी गायब हो जाती है। अब खुशी को गायब करने वाली कुछ एक बातें मैं आपके आगे पहले रख दूं। कायम कहने वाली बातें तो हम सब जानते ही हैं कि अगर एक बाबा के साथ सर्व संबंध रखें, एक बाबा को अपना बना करके, दिलवाला बना करके रहें, तो हमारी खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। एक से श्रेष्ठ संपर्क रखें, हमारा दैवी परिवार इतना बड़ा अपना परिवार है, बाबा हमारा है, उसके साथ हमारा अगर अविनाशी श्रेष्ठ संपर्क है तो भी खुशी गायब नहीं हो सकती। एक के स्नेह में समाये रहें, एक के साथ पूरी लगन हो तो भी खुशी गायब नहीं हो सकती। अगर एक के साथ ही सर्व प्राप्तियां एक से हम कर रहे हैं कि बाबा से मुझे सब कुछ लेना है, तो भी खुशी गायब नहीं हो सकती। तो बाबा ने खुशी को कायम करने के लिए इतने सारे हम सबको साधन दिए, इतना खुश नसीब बनाया कि बच्चे तुमको इतनी मैं खुराक देता हूँ, इस खुशी की खुराक को सिर्फ खाते रहो। खुशी खुराक भी है और खुशी खजाना भी है। जो खुशी की खुराक खाते हैं वो हेल्दी रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते जल्दी जल्दी, माया की बीमारी में कभी मूर्छित नहीं होते। और जिनके पास खुशी का खजाना है वो इतने भरपूर रहते हैं कोई भी चाहना नहीं रहती। अधिकतर खुशी को हद की चाहनाएं छीन लेती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति के अंदर हद की चाहनाएं रहती हैं, कोई भी प्रकार की, मुझे सीट मिले, मुझे चांस मिले, मुझे ये कार्य मिले, हद की कामनाएं, मेरा मान हो, मेरी महिमा हो, मेरा नाम हो, मेरी शान हो, अगर कोई भी हद की कामना लेकर के हम चलते हैं और हमें नहीं वो प्राप्त हो पाती है, तो आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार की हमारी कामनाएं हैं अगर वो पूर्ण नहीं होती तो हमारी खुशी उड़ जाती है, गायब हो जाती है। हम सोचने लगते हैं इसको तो इतना चांस मिलता है, इसको तो इतना, ये पढ़ी लिखी भी नहीं है, इतना तो इसके अंदर योग्यताएं भी नहीं है, इतना अच्छा तो ये समझाती भी नहीं है, इसको सब चांस मिलते हैं और मेरे को कोई नहीं चांस देता। अगर ईर्ष्या की जरा भी भावना परिवार के बीच में, एक दूसरे के बीच में प्रवेश हो गई तो ईर्ष्या जहाँ आ जाती है वहाँ खुशी अपने आप उड़ जाती, गायब हो जाती। अपने इतनी प्राप्तियों को भूलकर दूसरों की प्राप्तियों से जो भेंट करता है वो कभी भी खुशनुमा नहीं रह सकता, उसका चेहरा सदा उदास, सदा मुरझाया हुआ। और बाबा कहता है अगर ऐसा चेहरा होगा तो, बाबा की और दादी की दो बात सुनाता हूँ, बाबा हमेशा अगर उदास चेहरे वाले को देखता था तो ये कहता था ये तो माया का दास है, उदास हुआ माना माया का दास, कहीं न कहीं माया ने इसको अपने अधीन कर दिया है। बाबा ऐसे शब्द उच्चारण करता है, कभी कभी बहुत कड़े शब्द भी देता है, वो अभी मैं सुनाऊं, आप लोग मुरली तो सुनते होंगे पढ़ते होंगे, कभी कभी बाबा कहता है ये घड़ी घड़ी ये मूड चेंज करते हैं, ये मूड मती हैं। और दादी हमेशा कहती थी, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी, कि अगर कोई का मूड घड़ी घड़ी चेंज करता है, मूड ऑफ होता है तो ये मुर्दा बन गया, मूड ऑफ माना मुर्दा, जैसे लाइट का स्विच ऑफ हो जाए तो अंधेरा छा जाता है ना, ऑफ हो गया तो शरीर से अगर आत्मा ऑफ हो गई तो शरीर मुर्दा हो गया। ऐसे ही अगर मूड घड़ी घड़ी चेंज हो जाए, कोई ने छोटी सी बात कह दी और उसको इतना गहराई से ले लिया, अंदर बिठा लिया, सामने भले कुछ नहीं बोले फिर वो भूलती नहीं है और अंदर अंदर रोना शुरू हो जाता है, पानी निकलने लगता है आंखों से, खुशी गायब हो जाती है। चेक करना आप सभी छोटे छोटे बहनें 10 साल के अंदर वाली हैं, ये पेपर तो सबके सामने आता होगा ना, कोई ना कोई छोटी मोटी बात हो गई संगठन के बीच में, बड़ी दीदी ने कुछ बोल दिया या आपस में कुछ हो गया, फौरन मूड खराब, खाना अच्छा नहीं लगेगा, संग अच्छा नहीं लगेगा, योग अच्छा नहीं लगेगा, मुरली अच्छी नहीं लगेगी, मूड ऑफ होता है तो क्या चिन्ह होते हैं, ऑफ, एकदम ऑफ, खुशी गायब। तो ध्यान देना, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करो, किसी से भी जेलसी नहीं करो, हरेक का अपना भाग्य है। अगर योग्य बनोगे तो योग्यताएं अपने आप सीट दिलाती हैं। कोई भी आत्मा अगर अपने आप को अच्छी तरह से स्टडी करके, खूब अच्छी तरह से कोर्स में तैयारी करके, पर्सनल अपने आप को स्वाध्याय करा के, पढ़ा करके, स्वचिंतन करके, ज्ञान से भरपूर हो जाए, अच्छी तरह से ज्ञान और योग की शक्ति जमा कर ले, उसको अपने आप सब चांस मिलने वाले हैं। इतनी सेवाएं वृद्धि को प्राप्त हो रही हैं, कोई भी ऐसा न सोचे कि मुझे चांस मिलेगा या नहीं, पता नहीं मेरे को तो स्थूल सेवाएं तो नहीं मिलेंगी। कई बार इसमें ही मूंझ जाती हैं बहनें, और उनकी खुशी गायब हो जाती है। लेकिन अगर वो अंदर अंदर अपनी स्थिति को जमा करके रहें, हर सेवा करते हुए मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ, जो बाबा दे जो परिवार में सेवा मिले, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम लोगों के रिकॉर्ड में कभी ना नहीं आया। और जितनी सेवाएं शायद आप लोगों ने किसी ने की हो, स्थूल सेवाएं, हमने 11 वर्ष तक हर प्रकार की कर्मणा सेवा की, चाहे वो झाड़ू लगाने की, चाहे धोबी घाट करने की, चाहे रोटियां पकाने की, चाहे नाइट ड्यूटी देने की, चाहे गर्म पानी कमरों में पहुंचाने की, हर सेवा स्थूल सेवाएं, सब सेवाएं बाबा के घर में बड़े प्यार से अपना यज्ञ समझ करके, अपना परिवार समझ करके की। कभी क्वेश्चन नहीं उठा ये सेवा मेरी थोड़ी है, इसलिए मैं थोड़ी सा आया हूँ यहाँ समर्पित होने, मुझे तो भाषण करने को मिले, मुझे तो क्लास कराने को मिले, मुझे तो ये चांस मिले। कई बार इस प्रकार के संकल्प हमारी खुशी को छीन लेते हैं, और इसको बाबा कहता है ये मांगने के संस्कार हैं। मांगने वाले को क्या मिलेगा, वो अपने आप को सदा खाली महसूस करता है। मांगने वाला हमेशा अपने को खाली अनुभव करता है, तब दूसरे के आगे हाथ फैलाता है। बाबा कहता है तुम अपने आप को भरपूर करो, इतनी मैंने तुमको प्राप्तियां कराई हैं, एक एक प्राप्ति का स्मरण करो और उस नशे में रहो, अपनी खुश नसीबी की अपने आप महिमा करो कि बाबा आपने मुझे क्या नहीं दिया, संसार की कौन सी चीज ऐसी रह गई जो मेरे जीवन में ना हो। सबसे बड़ी तो आंतरिक खुशी दी, अंदर की खुशी के लिए लोग तड़प रहे हैं। तन का भी भाग्य दिया है जो इतना सुंदर सेवा के लायक शरीर मिला है, बाबा के कार्य में यूज हो रहा है, भगवान के योग के लिए इतना सुंदर माध्यम मिला है। तन की भी बहुत बड़ी महिमा है, इतना एक्यूरेट और सेवाधारी तन मिला है, सेवा करने वाला, इसलिए तन का भाग्य है। मन भी इतना अच्छा है जो इतना खराब अभी नहीं हुआ है, इतना भटका हुआ मन नहीं है जो कभी कंट्रोल ना हो। कोई कोई संग दोष में आए हो, लेकिन अधिकतर सब बाल ब्रह्मचारिणी पवित्र कुमारियां हैं, मन भी कहीं विचलित नहीं हुआ, गंदगी की ओर नहीं गया, ये भी बड़ा भाग्य मिला। और अविनाशी संपत्ति हम सबको बाबा ने दी है, कितनी संपत्ति भरपूर कराई। स्थूल धन तो बाबा कहता तुम्हारे चरणों में आने वाला है, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास गुणों का धन है, ज्ञान का धन है, शक्तियों का धन है, प्योरिटी का धन है, ये बहुत बड़ा धन है। इस धन के पीछे सब धन अपने आप आएगा, धूल समान है। अगर गुणों का धन किसी के पास है तो स्थूल धन तो उसके पीछे पीछे आने वाला है। इसलिए इतना बड़ा भाग्य है, फिर भी मैं कहूँ मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे को कोई चांस नहीं है, बाबा मुझे ये मदद कर दे, बाबा मुझे ये मदद कर दे, तो अगर रायल रूप में भी कोई मांगने के संस्कार होंगे तो बाबा कहेगा ये मांगता है कभी खुश नहीं रह सकता, खुश नसीबी नहीं अनुभव कर। और अगर चलते चलते कभी भी आपस में थोड़ा भी टकराव हो गया, कोई भी कारण से मन मुटाव हो गया, आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के साथ टक्कर हो गई, तो खुशी गायब हो जाएगी, कभी भी खुशी पास में नहीं रहती। कभी कभी तो लौकिक जीवन याद आ जाएगी कि ऐसा हमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि जहां जाओगे वहां हिसाब किताब तो होता ही है। कोई ऐसा कह ही नहीं सकता है कि हम यहां पर जाते हैं मेरा तो कोई के साथ है ही नहीं कुछ। जिस स्थान पर बाबा भेजेगा, जहां भी जाएंगे तो बाबा कहता कोई ना कोई आएगा ही, पेपर लेने वाला, हिसाब किताब वाला, अगर उससे डर गए तो कभी खुशी नहीं रह सकती। इसलिए भले आए, कोई भी हिसाब किताब आया है, कोई भी आपस में संस्कारों की बात आई, ध्यान ये रखना है मैं कभी भी किसी के साथ टक्कर न खाऊं। एकदम नम्रचित होकर के, नम्रता के आधार से अपने आप को सॉरी करके, झुक करके चलने में ही फायदा है। टक्कर लेने से, आपस में मन मुटाव होने से कभी भी संगठन में खुशी की अनुभूति नहीं की जा सकती। इसलिए जितने टकराव होते हैं उसका कारण है कोई न कोई पुराना हिसाब किताब। अब उसके बीच में मेरी खुशी न छिन जाए, बाबा ने हमें खुशी की खुराक खिलाई है, हिसाब किताब आए तो बाबा क्या कहता है, खेल की तरह से उसको पूरा करो। खेल है ये भी, इसलिए मेरी खुशी कोई छीन करके न जाए। इसलिए सबसे अच्छी सीट कौन सी है? साक्षी दृष्टापन की सीट। अपने भी हिसाब किताब को साक्षी होकर के देखने का अभ्यास करो। और कोई भी आत्मा अगर ऐसी आपके सामने परीक्षा रूप बन करके आती है, उसको भी साक्षी होकर के देखो, न्यारे बन करके। बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, सचमुच अगर इस ज्ञान को आप लोग यूज करके देखेंगे, ये ज्ञान, इसको बाबा कहता है चोपचीनी है, बहुत शक्तिशाली है। इतना शक्तिशाली ज्ञान है, जो इसका मंथन करो, चिंतन करो, सुमिरन करो, मगन रहो, मन और बुद्धि को विजी करके रखो, छोटी मोटी बातें संगठन में आएंगी, पार हो जाएं, खेल लगेगा। ये तो खेल है, ये खेल है। कभी भी खेल में खुशी गायब न हो जाए। और सबसे बड़ी खुशी गायब होने का एक कारण है परतंत्रता। यदि मैं आत्मा अपने संस्कारों के अधीन हूँ, मैं आत्मा परतंत्र हूँ, सबसे बड़ी परतंत्रता कौन सी है? अपनी कर्म इंद्रियों से परतंत्रता, गुलाम हो गई आत्मा। मालिक थी, राजा थी, लेकिन वो जवान की गुलाम बन गए। कुछ न कुछ मुख से निकल जाता। जवान दो काम करती है, एक तो खाने पीने में स्वाद लेती है, स्वाद लेने का काम करती है, और दूसरा बोलने का काम करती है। और ये दोनों पर अगर किसी योगी का, किसी समर्पित भाई बहन का ध्यान नहीं है, तो ये दोनों चीजें बहुत नुकसान करती हैं। अधिक चटपटा खाया तो भी इंद्रियों में उत्तेजनाएं आएंगी, शांति नहीं रहेगी, खुशी नहीं रहेगी। और अधिक बोलना, अधिक जबान चला दी तो टक्कर हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान रखना कि मैं आत्मा मालिक हूं, मैं अपनी कर्म इंद्रियों के गुलाम न बनूं, इनका मैं राजा बनकर के रहूं। तो जो परतंत्र है वो कभी खुश नहीं रह सकता। संस्कार आत्मा को अपने परतंत्र बनाए हुए हैं। ये स्थूल कर्म इंद्रियां कभी आंख धोखा देती, कभी कान धोखा देता, कभी मुख धोखा देता, कभी हाथ भी धोखा दे देता। ये कर्म इंद्रियां भी अधीन बनाए हुए हैं, इसलिए व्यक्ति आज खुश नहीं रह सकता। और बाबा ने अपने बच्चों को ये सबसे पहला लेसन पढ़ाया, तुम आत्मा राजा हो, तुम आत्मा मालिक हो। अगर मालिक बन करके रहेंगे, कोई कर्मिंद्री धोखा नहीं देगी, तो ये परतंत्रता कभी नहीं आएगी। और परतंत्र नहीं है तो सदा खुश। अगर कोई परतंत्र है, आजकल भी क्या होता है, कोई टीचर बहुत कड़क होती है, कोई मुख्य बहन जो होती है, बड़ी बहन कड़क होती, तो अपने अंडर रखती है, ये करना ये नहीं करना, ये करना ये नहीं करना, तो उस बहने समझ ले ये तो परतंत्रता है। ये परतंत्रता वास्तव में स्वतंत्रता है, क्योंकि हमको कई कायदों पर, कई नियमों पर चलने के लिए बाध्य कर देती है। हमारी जीवन के लिए बहुत आगे बढ़ने का साधन बन जाती है। तो कभी भी ऐसे नहीं समझो कि बहन तो सदा टोकती रहती है, सदा कहती है ऐसे चलो, ऐसे रहो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे बोलो, ये भी तो परतंत्रता है, कहाँ खुशी रहेगी। लेकिन यदि इसको परतंत्रता न समझ करके, ये हमारे ईश्वरीय कायदे हैं, ईश्वरीय नियम है, इसमें मेरी प्रगति है, इसमें मेरी उन्नति है, इसको एक पॉजिटिव रूप देना आ जाए, तो आपकी खुशी कभी गायब नहीं होगी। साधनों के पीछे जाएंगे तो भी खुशी गायब हो जाएगी, क्योंकि बाबा कई बार कहता है इच्छाएं मृग तृष्णा के समान होती हैं। समझते हैं मृग तृष्णा की कहानी? मृग होता है ना हिरण, उसको जब प्यास लगती है तो क्या करता है? वो रेत होती है, रेत को पानी समझता है। रण होते हैं ना, रण बड़े बड़े रेत वाले मैदान, दूर से धूप जब पड़ती है तो चमकते ऐसे हैं जैसे पानी का तालाब है, तो हिरण समझता है वहां पानी है। और पानी समझने के कारण वो प्यासा होता है, गर्मी बहुत तेज होती है, बहुत तेज भागता है कि वहां पानी है, वहां पानी है। और जितना भागता जाता है, रण लंबे होते हैं, कई किलोमीटर, हजारों किलोमीटर के, तो उसके पीछे भागते 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 थक जाता है, फां हो जाता है और एकदम प्राण दे देता है, पानी नहीं मिलता उसको, क्यों पानी तो है ही नहीं, वो तो रेत चमक रही धूप में। तो बाबा हम सबको क्या कहानी सुनाता है, ये मृग तृष्णा, इच्छाएं जो हैं मृग की प्यास की तरह हैं, अगर आप इनके पीछे भागेंगे 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 तो कभी भी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इसलिए इच्छाओं को बाबा तो ऐसे नहीं कहता दमन करो, लेकिन इच्छाओं को सीमित कर दो। जो आपको आवश्यकताएं हैं बाबा जरूर पूरी करेगा, लेकिन इच्छाएं के पीछे अगर जाएंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि सब इच्छाएं हरेक की पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए जितना बाबा ने दिया है, जितनी प्राप्तियां संगम युग पर भगवान ने हमें कराई हैं, वो बहुत है, अथाह है। उन प्राप्तियों का चिंतन करो, अमृत वेले से रात्रि तक संगम युग पर हम बच्चों को इतनी श्रेष्ठ उपलब्धियां हैं, इतनी अधिक प्राप्तियां हैं, जो बाबा, कभी कभी हमारी दादी गुलजार क्या कहती हैं, बाबा ने हमारी ऐसी पालना की जो राजाएं महाराजाओं के बच्चे भी नहीं पलते होंगे, इतना बाबा प्यार से पाल रहा है। भले आजकल के नियम अनुसार कुछ एक चीजें आपको जरूरत की भी लौकिक से लेनी पड़ती होंगी, कईयों के पास ऐसी बातें होती हैं, लेकिन फिर भी बाबा के घर में कोई भी अप्राप्ति नहीं रहती, हर चीज की बाबा प्राप्ति करा देता है। कोई भी आवश्यकता होगी कहीं न कहीं से वो अवश्य प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इच्छाएं मतलब इच्छाएं कभी भी सुखी रहने नहीं देंगी। इसलिए साधन आएंगे, साधन तो हैं ही बच्चों के लिए, बाबा कई बार कहते हैं ये प्रकृति जो है आपके लिए ही तो है, लेकिन अगर इनके पीछे पीछे आप भागोगे तो ये साधन भी आपको दुखी कर देंगे। इसलिए कोई भी साधन की इच्छा न रख करके साधन आए वो सेवा में लगा दो। साधन आया है सेवा के लिए है, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बाबा सफेद ड्रेस पहनाएगा रोटी खिलाएगा, इतना निश्चिंत हो करके जो मिल जाए उसमें तृप्त हो करके संतुष्टता के गुण को अपना श्रृंगार बनाने वाली आत्मा सदा खुशी में रह सकती है। तो खुश नसीबी ये है कि हम सबको बाबा ने इतनी प्राप्तियां कराई हैं, उनका बार बार चिंतन किया जाए। अमृत वेले उठकर के आंख खुलते ही पहली प्राप्ति का भाग्य जो हम सबको भगवान का दर्शन डायरेक्ट होता है, लोगों को तो भगवान का परिचय ही नहीं है, और हमारी आंख खुलती है बाबा के पास, हमारी दृष्टि पहुंचती है, संकल्प पहुंच जाता है, तो सबसे बड़ा भाग्य क्या है। लेकिन इसका नशा है, ये खुशी रहती है कि आंख खुलते ही हमारा जिसके साथ मिलन होता है वो सर्वोच्च सत्ता सर्वशक्तिमान स्वयं भगवान सर्वज्ञ मेरा बाबा मुझसे कहता है बच्चे गुड मॉर्निंग, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। लेकिन आदत डाल ली जाए वो मिलन मनाने की, वो प्यार से रूह रियान करने की, वो शक्ति लेने की, देखो कितनी खुश नसीबी का अनुभव होगा। लेकिन कई बार हम अमृत वेले अलवेले हो जाते, कहते क्या करूं, थक गए हैं, आंख नहीं खुली, नींद आती है, बैठते हैं योग में फौरन नींद आ जाती, थके हुए हैं। लेकिन अगर चिंतन अच्छा किया जाए, खुशी के संकल्प इमर्ज किए जाएं, अपने भाग्य के संकल्प इमर्ज किए जाएं, तो अपने आप नींद भाग जाएगी और प्रभु मिलन का आनंद ले सकेंगे। तो सबसे बड़ा भाग्य है, सबसे बड़ी खुशनसीबी है जो भगवान का सवेरे सवेरे हम सबसे मिलन होता है, और फिर खुद टीचर बनकर के हमको पढ़ाता है। ये कोई कहने की बात नहीं है, हम सब पढ़ रहे हैं भगवान की मुरली, उसके महावाक्य डायरेक्ट हम सुन रहे हैं, कितना बच्चे 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 कहकर के हमारा श्रृंगार कर रहा है। इतनी सुंदर शिक्षाएं हैं, मैं कहता हूं कोई ने भले दुनिया का कोई ज्ञान न पढ़ा हो, हमारी बहनें अगर उन टॉपिक पर बोलना शुरू कर दें तो सबसे नंबर वन टॉप की स्टेज पर पहुंच जाता है। लोग कहते हैं आप ये पढ़े हो क्या, हम लोग कृषि के विषय में कुछ नहीं जानते, एग्रीकल्चर का पता ही नहीं है, और अगर हम यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर पर लेक्चर देते हैं तो कहते हैं आपने कितना पढ़ाई किया है, कौन सी डिग्री आपने ली है। बाबा ने इतना पढ़ा दिया है, इतना पढ़ा दिया है, सारी दुनिया का ज्ञान दे दिया। तो अगर बाबा की मुरली से अच्छी तरह से प्यार है और उसका अच्छा स्टडी किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ आपको दुनिया का जो ज्ञान है, इतिहास, भूगोल, साइंस, सब कुछ भगवान हम बच्चों को बहुत स्पष्ट रीति से बच्चे बच्चे कह करके सरल शब्दों में पढ़ा रहा है, जिसको दुनिया समझ ही नहीं सकती। आप सोच सकते हो, कभी कहेंगे मंगल ग्रह पर दुनिया है, कभी कहेंगे चांद पर दुनिया है, कभी कहेंगे शुक्र पर दुनिया है, कभी यहाँ है, कभी वहाँ। और कितना खर्चा करते हैं, अरबों रुपया खर्चा करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना परेशान होते हैं उसके पीछे, लेकिन उनको क्या प्राप्त होता है? कंकड़ पत्थर ले आते हैं वहां से, कुछ नहीं मिलता। और बाबा ने अपने बच्चों को इतने सरल शब्दों में बता दिया, बच्चे दुनिया एक है, रचयिता एक है, रचना एक है, सृष्टि रंगमंच एक है, सूर्य चांद इसकी बत्तियां हैं, ये तारा नक्षत्रगढ़ इसकी रोशनी के साधन है, किसी भी स्टार के ऊपर दुनिया नहीं है। कितनी अरबों खरबों की बात, और बाबा ने कितने सरल शब्दों में बता दी। विज्ञान जहां तक नहीं पहुंच सका, साइलेंस की शक्ति से हम लोगों को अनुभव हो गया। हम अथॉरिटी के साथ कह सकते हैं, आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी खोजें कर लो, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, दुनिया ही एक। तो इतनी ऊंची ऊंची बात बाबा ने मुरली के अंदर हमको इतने सरल शब्दों में बताई है, अगर सचमुच इसका कोई अध्ययन करे अच्छी तरह से, तो मैं समझता हूँ किसी भी दुनिया के ज्ञानी को, एम ए बी ए डिग्री प्राप्त हुए विद्वान को, आईएएस को, उसको चैलेंज में बता सकता है कि भगवान ने हमको पढ़ाया। इतनी बड़ी पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, इस भाग्य का चिंतन करो। भगवान ने ये सब सब बातों का ज्ञान कितना स्पष्ट और विस्तार से हम सबके सामने बच्चे बच्चे कर करके हम सबको पढ़ा दिया। कितना बड़ा पढ़ाई का भाग्य है। और फिर पालना कैसी है, एक एक चीज का ध्यान रखता है, बच्चे कैसे चलते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, क्या करते हैं, एक एक पर बाबा की नजर है। हम तो एक स्लोगन सब हमेशा देखते हैं, यहाँ पर एक जहाँ कैमरे लगाए गए ना कमरों के आगे, वहाँ लिखा है सावधान, पढ़ा होगा आप लोगों ने, सावधान आप कैमरे की निगरानी में हैं, लिखा होता ना स्लोगन, जहाँ कैमरे लगे हैं वहाँ एक स्लोगन लिखा होता, सावधान आप कैमरे की निगरानी में हैं। और हम क्या कहते हैं सभी, सावधान भगवान की निगरानी में हम चल रहे हैं, है ना सा? आप कहीं भी बैठे हो आप निगरानी में हैं कि नहीं है? है नजर भगवान की आपके ऊपर, आप क्या खा रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं, आप कैसे सो रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, एक सेकंड में बाबा देख लेता है। सबसे बड़ी खुश नसीबी कि सदा भगवान की नजरों के नीचे चल रहे हैं, ठीक है, नशा है वो हमें हमेशा देख रहा है, इसलिए कोई भी आज्ञा की कभी अवज्ञा न हो। अगर जरा भी किसी आज्ञा की अवज्ञा होगी तो सबसे पहले हमारी खुशी छिन जाएगी, गायब हो जाएगी। इसलिए कोई भी आज्ञा जो अमृत वेले से रात्रि तक बाबा की श्रीमत और आज्ञाएं मिली हुई हैं, अगर मेरे ध्यान पर निरंतर हैं, तो कभी खुशी गायब नहीं हो सकती। खुशी को कायम रखने के लिए और बढ़ाने के लिए मैं कुछ बातें आपके बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान पर देता हूं। सबसे पहले एक व्रत ले लो कि मैं जहां पर रहूंगी, जहां रहना है वहां सहना है, कुछ न कुछ तो सहन करना पड़ेगा। कब तक सहन करूंगी ये क्वेश्चन ही नहीं है। सहन एक शक्ति है, सहनशीलता एक गुण है, और जिसके पास सहनशीलता का गुण है उसकी सबसे अच्छी निशानी वो हर स्थान पर स्वयं को एडजस्ट कर लेगा। कोई कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी संस्कार वाली आत्मा हो, कितनी भी कड़ी सासू जैसी टीचर हो, उसके साथ भी वो मिलनसार होकर के चल सकती है, एडजस्ट कर लेगी नेचर को समझ करके। इसलिए खुशी गायब न हो उसके लिए मुझे हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करके चलना है। कभी भी प्रश्न नहीं करना ये क्यों, ये कैसे, ये कैसे, कौन करता, किसने किया, मेरी चुगली किसने की, मेरी बात किसने कह दी। अगर कभी भी क्यों क्या कैसे के उलझन में प्रश्न किए तो आपकी खुशी छिन जाएगी। इसलिए प्रसन्नचित मुझे रहना है, मुझे किसी के प्रश्नों में नहीं जाना है, जो करेगा वो पाएगा, मैं किसी की न करूं। अगर मेरे अंदर वो संस्कार होगा, मेरे को कोई की कंप्लेन करने की आदत पड़ गई, तो अगर एक मैं करूंगी तो मेरी 10 दूसरे करेंगे। इसलिए मुझे किसी की कंप्लेन नहीं करनी है। अगर कंप्लीट बनना है तो ध्यान रखना मुझे किसी की कंप्लेन नहीं निकालनी है, भले मेरी कोई कितनी भी निकाले। अगर मैं सत्य हूं, अगर मैं बाबा की आज्ञा पर निरंतर चल रही हूं, तो डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, भले आज कोई पर पहचाने या न पहचाने, कोई कलंक भी क्यों न लगा दे, लेकिन अगर मैं सच्चा हूं तो मेरे पर आंच नहीं आ सकती। इसलिए सच्चाई की विजय होगी इस निश्चय में चलो, बाबा आपको कहीं न कहीं सेफ्टी के स्थान पर पहुंचाएगा और आगे प्रगति करा देगा अगर सच्चे हैं तो। इसलिए कभी डरना नहीं, कभी घबराना नहीं, सच तो बिठो नच, सच्चे हो तो खुशी में बैठ के डांस करो, इतनी अंदर की सच्चाई चाहिए। मैं बाबा की, बाबा मेरा। अगर प्यूरिटी की धारणा में गड़बड़ नहीं है, अगर जरा भी कोई भी प्रकार की लीकेज नहीं है, तो बाबा मेरा रखवाला है, मेरा साथी है, वो कभी भी मुझे मदद के लिए बंधा हुआ है। कभी भी मर्यादा की लकीर का उल्लंघन मैं न करूं, अंगूठा भी बाहर न निकालूं। देखो बाबा आपकी कैसे मदद करता है, सदा साथ निभाने के लिए बंध जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति में स्वयं को एडजस्ट करना, कभी किसी की कंप्लेन मुझे नहीं करनी, कंप्लीट बनना है। बाबा कहता है अगर तुम विशेषताएं देखते रहोगे तो विशेष आत्मा बन जाओगे, अगर कमियों पर ध्यान दोगे तो सारी कमियां तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। इसलिए मुझे किसी की कमियों पर ध्यान नहीं देना, भले किसी की कितनी भी कमियां क्यों न हो, मुझे बाबा ने कमियां देखने की ड्यूटी नहीं दी है। विशेषताएं देखो, विशेषताएं आ जाएंगी, विशेष आत्मा बन जाएंगे। हर बात में, नेगेटिव में भी, अकल्याण में भी कल्याण का रास्ता निकालना है। कहां पर मेरा कल्याण छिपा हुआ है, इस बात में मेरा क्या कल्याण है दिखाई दे रहा है, यह कल्याण वाली बात है, ये ऐसी बात मेरे लिए उठी है, इसमें पता नहीं मेरा क्या होगा, घबराने और डरने की बात नहीं है। अगर सच्चाई है मेरे अंदर तो उस अकल्याण में भी कल्याण कहीं न कहीं समाया हुआ है। अपनी स्थिति को जल्दी से डावाडोल नहीं करो, अपनी खुशी को गायब नहीं करो, आती हैं बातें खत्म हो जाती, बातें मेरी खुशी को छीन करके न ले जाएं। ये ध्यान रखना, बातें आएंगी चली जाएंगी, मेरी खुशी चली जाएगी तो कौन देगा मुझे। इसलिए खुशी में रहने के लिए अपने आप को तैयार रखो कि मैं अपने आप को कैसे सकारात्मक सोच करके सद विवेक से काम लेकर के परीक्षा आई धैर्यता से सामना करो। तुरंत जवाब कभी नहीं देना, जवान पर कंट्रोल, चुप हो जाओ, अपने आप बात सिद्ध हो जाएगी। अगर तुरंत कह दिया, जिद किया, सिद्ध किया, तो जिद और सिद्ध करेंगे तो कहेंगे जरूर इसके अंदर कुछ है। क्यों जिद और सिद्ध करें हम चुप होने में? कहते एक चुप सौ भला, सौ लाभ उससे मिल जाते हैं। इसलिए उस समय चुप होकर के सुन लिया, समा लिया, ठीक है, अगर कोई करेक्शन है तो करेक्शन कर लिया, बात बात हो जाएगी, लेकिन मेरी स्थिति तो नहीं बिगाड़ के जाए। अगर इतना ध्यान रखेंगे ना पढ़ाई में कि बाबा ने हमको ये पढ़ाया है, छोटी छोटी बातों में मुझे मूड बिगाड़नी नहीं है, बातें आएंगी खत्म हो जाएंगी। अगर कोई आ गई, मैं अपनी दादियों को देखता था, बड़ी बड़ी बातें आती, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपनी स्थिति को एकदम नॉर्मल कर लेते, चेहरे पर नहीं लाते, वर्णन नहीं करते किसी के आगे। कोई भी बात छोटे से बड़ी तब बनती है, कब बनती है? जब सोचा जाता है, बहुत सोचा जाता है। क्यों, क्या, कैसे, क्वेश्चन लगा दो, सोचते रहो, एक लेख तैयार हो जाएगा। अधिक सोचने से वो बात बहुत बड़ी बन जाती है, और सोचने के बाद अगर वर्णन कर दी, किसी को सुना दिया, दिल हल्की कर दी किसी के आगे, तो बात बात नहीं रहती, वो पहाड़ बन जाती, वायुमंडल में फैल जाती, और वो हमारे सामने ही, हमारे पुरुषार्थ के आगे पहाड़ आकर के खड़ा हो जाता। इसलिए जहां तक हो सके, बाबा कहता अगर कोई भी बात हो गई, अधिक सोचो नहीं, बोल बोल करके अपना और दूसरों का समय बर्बाद नहीं करो। अगर कोई बहुत बात खटक रही है, एक कागज पर लिख करके बाबा के आगे रख दो, लाइट हो जाओ। डबल लाइट रहना, स्थिति डबल लाइट रहे, खुशी कभी गायब नहीं होगी। और जो खुशी का खजाना बाबा ने दिया है, ध्यान रखो ये बढ़ेगा तभी जब मैं दूसरों को खुशी का दान करूंगा। जितना दूसरों को देंगे उतना हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। इसलिए दान देना, दुआएं देना, दुआएं लेना, जितना हो सकता मुझ आत्मा को कोई भी आत्मा बददुआ न दे। बाबा ने मुझे गोल्डन चांस दिया है, इस चांस को कभी गंवाना नहीं। सबसे बड़ा चांस है दुआएं लेने का। संगम युग पर जितना चांस समर्पित भाई बहनों को दुआएं लेने का है, उतना कोई को भी नहीं। जितना चाहे वो ले सकते हो। ज्ञान दान दो तो दुआएं मिलेंगी, गुणों का दान दो दुआएं मिलेंगी, स्थूल में किसी को भोजन बना के खिला दो तो दुआएं मिलेंगी, अच्छा साफ स्वच्छ स्थान बना दो तो दुआएं मिलेंगी, कोई आया है दुखी अशांत, उसको बाबा की कोई दो बातें सुना दो तो दुआएं मिल जाएंगी, किसी के दुख हर लो तो दुआएं मिल जाएंगी। दुआएं लेने का हम सबको बाबा कहता है दरवाजा खोल दिया मैंने। जितनी चाहे वो दुआएं ले सकते हो, और दुआएं लेने का साधन है सच्चे दिल की सेवा। सच्चे दिल से सेवा करो, भारी होकर के सेवा करेंगे तो दुआएं नहीं मिलेंगी। तो एक तो माता पिता मुझे दुआएं दें, कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की तो सिर से उतरेगी गठरी पाप की। तो माता पिता की दुआएं मिलेंगी तब जब हम उसके आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, सच्चे बन करके, बच्चे बन करके रहेंगे, माता पिता की दुआएं मिल जाएंगी। फिर हमारे बड़े हमको दुआएं दें, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो कह रहे हैं हाँ जी करने से दुआएं मिल गई। साथी सहयोगी, एक दूसरे को आगे बढ़ाने से सही दुआएं मिल जाती। स्टूडेंट्स की पालना करते, अच्छी तरह से ज्ञान सुनाते, उनको सही मार्ग दिखाते, सही दिशा दिखाते, सोन्नति के साधन बताते, उनकी दुआएं मिल जाती। तो हम सबको बाबा ने दुआओं के खजाने से भरपूर किया है। खूब दुआएं लूट लो, जितनी दुआएं जमा कर लो। हमारी दादी जी कहती थी अंत में शरीर का बहुत बड़ा पेपर आया, शरीर का हिसाब किताब तो हर एक के सामने आता है ना, तो दादी कहती थी कभी मुझे दर्द की महसूसता नहीं हुई। सबकी दुआएं हैं, परिवार की दुआएं हैं, बड़ों की दुआएं हैं, और दुआओं के कारण कभी दर्द की महसूसता नहीं हुई। तो सबसे बड़ा चांस आप सबको है, दुआएं लो, दुआएं दो, खुशी दो, खुशी लो, कभी किसी को अपनी तरफ से डिस्टर्ब न होने दो। सबसे बड़ी सेवा है बिगड़ी को बनाना, किसी की मूड बिगड़ जाए बनाने में काम करो, मदद करो, कोई चीज बिगड़ जाए उसको सुधार करके संभाल करके संभाल दो। तो अगर हम बिगड़ी को बनाने में सहयोग बनते हैं तो ये बाबा जैसी सेवा हो जाती है, सबकी दुआएं मिल जाती हैं। लेकिन कोई की मूड बिगड़ी है और बिगाड़ दिया दो बातें सुना करके, वो रो रहा है और उसको रुला दिया, तो उसकी बददुआएं मिल जाएंगी। इसलिए बहुत ध्यान देना है कि बाबा ने हम सबको दुआएं लेने के लिए साधन दिया है, और वो साधन का जितना हम प्रयोग करेंगे, दुआओं का खाता हमारा भरपूर रहेगा, खुश रहेंगे और खुशी बांटेंगे। और चेहरा बताएगा सचमुच जो अंदर होता है ना, अंदर आपके जो चल रहा होगा चेहरे पर वो आ जाएगा। अंदर का दर्पण चेहरा है। अगर आप अंदर अंदर अच्छे अच्छे विचार करते हैं, अच्छे अच्छे चिंतन में रहते हैं, खुशी के संकल्प सदा करते रहते हैं, अंदर से प्रफुल्लित रहते हैं, तो चेहरे पर वो चिन्ह दिखाई देंगे, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, खिला हुआ चेहरा, जो सबको पसंद आता है, बाबा को बहुत पसंद आता है, वाह बच्चे का चेहरा कितना अच्छा है। किसी को बहुत अच्छी अच्छी खुराक खिलाई जाती हो और सदा बीमार रहता हो, सदा मुरझाया हुआ रहता हो, तो लोग क्या कहते हैं, पता नहीं किसकी नजर इसको लग गई। बाबा हम सबको इतनी अच्छी खुराक खिला रहा है, इतना अच्छा भोजन खिला रहा है, ज्ञान रत्नों का भोजन, खुशी का भोजन रोज खिला रहा है, और फिर भी अगर मैं उलझा हुआ, मुरझाया हुआ, सुस्त बन करके रहूं, तो लोग यही कहेंगे पता नहीं माया की नजर तो नहीं लग गई। तो ध्यान रखना किसी की नजर न लग जाए, एक बाबा की नजरों में मैं सदा रहूं, बाबा मेरी नजरों में रहे, मैं बाबा की नजरों में रहूं। हमेशा आंख खुलते ही बाबा को अपनी नजरों में बिठा लो। जैसे नजरों के बीच में जो देखने वाली चीज है ना, बहुत छोटी सी बिंदु, अगर उसके ऊपर जरा भी आ जाता है ना कुछ, तो कहते इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बाबा अपनी नजरों में आ जाए सवेरे सवेरे, बाबा को नजरों में संभालो, कोई की नजर लगेगी नहीं, आपकी खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। और अंदर की खुशी का प्रतिबिंब क्या है, तो अंदर की खुशी का प्रतिबिंब है हमारा ये खुशनुमा चेहरा। और बाबा ने सचमुच ऐसा बनाया है हम सबकी जीवन, इतनी स्वच्छ जीवन, इतनी पवित्र जीवन, इतनी निश्चिंत जीवन। दादी जानकी से एक प्रश्न कोई पूछता है ना, दादी कहती पता है मेरा मैं कहाँ रहती हूँ, मैं तो कहाँ रहती हूँ, बेगमपुर में रहती हूँ, कभी मेरे पास गम आता ही नहीं है, बेगमपुर की बादशाह हूँ, दिलाराम मेरा साजन है और मेरे दो बच्चे हैं सुख शांति, और इसके सिवाय मेरा कोई परिवार ही नहीं है। दिलाराम साजन बना गया और उसके बच्चे मिल गए सुख और शांति। तो सुख शांति के जीवन में जीना, इतना खुश नसीबी का अनुभव करना जो बाबा ने नसीब दिया है। हम कहते हैं कभी भी किसी को ये हाथ की रेखाएं दिखाने की जरूरत नहीं है, बाबा ने इतनी लंबी भाग्य की रेखा हम सबको खींच करके दी है कि बच्चे 21 जन्म किया तुमको, मैं 84 जन्मों के भाग्य की रेखा खींच देता हूँ, और खींचने की कलम मैं तुम्हारे हाथ में दे देता हूँ, तुम अपने भाग्य की रेखा भी खींच लो, और तुम्हारे संबंध संपर्क में जो आए उसका भी भाग्य बना दो। कौन सी कलम है सबके हाथ में, श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठता ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। हमेशा श्रेष्ठता, श्रेष्ठ कर्म करना है, श्रेष्ठ चिंतन करना है, मुख से जो बोलना वो श्रेष्ठ बोलना है, साधारणता नहीं। अगर साधारणता है संकल्पों में, बोल में, कर्म में है, तो भाग्य ऊंचा नहीं बन सकता। तो भाग्य विधाता बाबा ने हम सबको भाग्य की रेखा खींचने की कलम दी है, अपना भी भाग्य अच्छे से अच्छा बने और सबका भाग्य बनाने के लिए निमित्त बनाया है, तो सबसे खुश नसीब कौन? बोलो हम, है ना? सभी ऐसे खुश नसीबी के गीत गाते रहना, कभी भी चेहरे पर उदासी, निराशा, हताशा के चिन्ह नहीं आने चाहिए। तब कहेंगे बाबा की सच्ची गोपिकाएं हैं, एक बाबा के ऊपर न्योछावर होने वाली भगवान की हैं। भगवान मिला, भाग्य मिला, इतना ऊंचा भाग्य और इतनी ऊंची भावी। तो तीन बातें याद रखना, भगवान मेरा बाबा है, भाग्य मेरा ऊंचे से ऊंचा है, और ये बनी बनाई भावी ड्रामा की जो भगवान के हम काम में आ गए। ठीक है, तो भाग्य, भगवान और भावी, ये तीनों चीजों की स्मृति में रहेंगे तो खुश नसीब, खुश नुमा बन करके अपने चलन और चेहरे से बताएंगे हमें कौन मिला है। हम कोई साधारण आत्माएं नहीं है, हम तो भगवान के चुने हुए रतन हैं, हम डायमंड हैं जिन पर भगवान की नजर पड़ी है। ठीक है, तो ऐसे खुश नसीबी के गीत गाते रहना। ओम शांति।